ये आकाशवाणी है। अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 वर्ष के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। आज शाम नई दिल्ली में संवाददाता को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि कोपरा के लिए नेफेड और एनसीसीएफ केंद्रीय नोडल एजेंसियां होंगी। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए यह खरीद राज्य सरकार के निगमों के सहयोग से की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने इस महीने की 18 तारीख को बैठक की थी। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के निपटारे के ढांचे पर चर्चा के अलावा शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन मुद्दों की व्यापक समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील तथा समावेशी बांग्लादेश का भी समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि म्यांमा को लेकर भारत का दृष्टिकोण स्थिर है। श्री जायसवाल ने कहा कि म्यांमा के पड़ोसी देशों से लगी सीमाएं भी विशेष चिंता का विषय है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी बंदूकों की खरीद के लिए 7,629 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लॉसन एंड ट्रूबो लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि K9 वज्र टी की खरीदारी तोपखानों के आधुनिकीकरण और भारतीय सेना के समग्र परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगी। मंत्रालय ने बताया कि ये बंदूकें उन्नत तकनीक से लैस हैं और लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने में सक्षम हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 54% से अधिक कामकाज जबकि राज्यसभा में 40% कामकाज हुआ। आज नई दिल्ली में सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों का कामकाज कम रहा और सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। श्री रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में दोनों सदनों में भारतीय वायु विधेयक 2024 पारित किया गया। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज कहा कि युवा केंद्रित नीतियों में भारत की पहल एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता दिखाती है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना लाभकारी सिद्ध हुई है और इससे देश ने इस वर्ष पेरिस में आयोजित ओलंपिक में 6 और 29 पैरालंपिक पदक जीते हैं। राजस्थान के जयपुर अजमेर राजमार्ग पर गैस टैंकर अग्नि दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। इस घटना में 29 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना आज सुबह 6 बजे अजमेर राजमार्ग पर तब हुई जब एक गैस टैंकर की टक्कर रिंग रोड के निकट एक ट्रक से हो गई। इस टक्कर से कई वाहनों में आग लग गई। दुर्घटना में 29 ट्रक और 2 बसों सहित कुल 40 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आग से जलने के कारण 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि इलाज के दौरान 6 लोगों के मरने की खबर है। घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी ने आकाशवाणी को बताया कि घायलों में 14 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। भारत अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने आज श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। रविवार को फाइनल में भारत का सामना वर्तमान चैंपियन बांग्लादेश से होगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की आशंका व्यक्त की है। पंजाब और राजस्थान में भी अगले 2 दिन यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।